समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के सामने लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और डेटा की वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया।
बीजेपी लीडर राहुल नार्वेकर इलेक्टेड अनअपोज्ड एज महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर।
आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की।
India calls for collective effort to preserve serious territorial integrity amid ongoing conflict.
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने ढाका में भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श के अंतर्गत अपने बांग्लादेशी समकक्ष जसीमुद्दीन के साथ वार्ता की।
And in hockey, defending champions India to take on Malaysia in Pool A match of the Women's Junior Asia Cup in Oman tonight. And now, Mukesh, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Anti-Corruption Day. Well, to start off, we start off with a famous quote by the US President Joe Biden, who very famously said, "Corruption is a cancer that eats away at a citizen's faith in democracy, diminishes the instinct for innovation and creativity."
बिल्कुल अभिषेक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अध्यक्ष डेलिया फरेरा ने कहा है कि लोगों की उदासीनता भ्रष्टाचार बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है और दुनिया में हर साल करीब ट्रिलियन डॉलर की घूस करोड़ों लोगों से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास छीन लेती है। पर आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, तो क्यों ना हम सदाचार की बात करें।
Yes, on December 9th each year, that is today, the world observes International Anti-Corruption Day, a day dedicated to raising awareness about the global scourge of corruption and the need for collective action to curb it.
भ्रष्टाचार रोधी संधि पर 140 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाने के बाद 14 दिसंबर 2005 को इसे लागू किया था।
Yes, Mukesh, and over the years, the day has gained importance due to increasing need of spreading awareness about the issue and sharing anti-corruption policies in order to strengthen international cooperation. Corruption is a complex social, political and economic phenomenon that affects all countries. Corruption undermines democratic institutions, slows economic development, and contributes to governmental instability.
बिल्कुल, भ्रष्टाचार चुनावी प्रक्रियाओं, कानून का शासन और नौकरशाही को विकृत करके लोकतांत्रिक संस्थानों की जड़ों पर हमला करता है, जिसका एकमात्र कारण रिश्वत की मांग करना है। भ्रष्टाचार एक बहुआयामी मुद्दा है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में गहराई से समाया हुआ है। इसमें रिश्वतखोरी और गबन से लेकर भाई भतीजावाद और सत्ता का दुरुपयोग शामिल है।
Absolutely, corruption when left unchecked not only undermines economic progress but also erodes public trust in institutions, hinders the rule of law and affects the welfare of ordinary citizens. On 31st October 2003, the General Assembly adopted the United Nations Convention Against Corruption and requested that the Secretary General designate the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, as the secretariat for the Convention's Conference of States Parties. The Assembly designated 9 December as International Anti-Corruption Day to raise awareness of corruption and of the role of the Convention in combating and preventing it. The Convention entered into force in December 2005.
बिल्कुल, ये कन्वेंशन और इसके द्वारा प्रचारित मूल्य पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सभी को इस अपराध से निपटने के प्रयासों में शामिल होने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, UNODC और राज्यों की पार्टियों के सम्मेलन के लिए सचिवालय भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुटता सुनिश्चित करने में सबसे आगे रहे हैं।
Yes, Mukesh, and a world confronts numerous challenges, tragedies, inequalities and injustices, many of which are tied to corruption. With the 1.9 billion young people in the world, fighting corruption is vital for the future of nearly a quarter of the global population. And International Anti-Corruption Day 2024 will spotlight the crucial role of youth in combating corruption with the campaign theme, Uniting with Youth Against Corruption, Shaping Tomorrow's Integrity. This global initiative aims to empower young people as agents of change, fostering a future rooted in transparency and accountability.
बिल्कुल, आज 9 दिसंबर को शुरू किया गया अभियान 2025 तक चलेगा और इसका समापन कतर की राजधानी दोहा में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 11वें सत्र में होगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस 2024-25 का अभियान ईमानदारी के लिए युवाओं की भूमिका, भ्रष्टाचार और उनके समुदायों पर इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। वे सक्रिय रूप से चर्चाओं में भाग लेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करेंगे।
Yes, and the campaign will amplify voices of integrity leaders of tomorrow, allowing them to express their concerns and aspirations with the hope that the appeals will be heard and acted upon. Building a just world and a sustainable planet is only possible if corruption doesn't stand in the way. The Indian government has recognized the need to tackle corruption through both legislative reforms and administrative actions. And Mukesh, some of the most prominent steps taken in the recent years are, firstly, the Right to Information Act, RTI 2005. Well, this is a landmark law that empowered citizens to seek information from government authorities, increasing transparency and accountability. And of course, RTI has played an essential role in curbing corruption by making government functioning more open to public scrutiny. And citizens can now file applications to request information about government projects, public spending and decision-making processes.
और इस दिशा में वस्तु और सेवा कर जीएसटी जो कि 2017 में शुरू हुआ था, उसने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल बनाना था। इसने कर चोरी को रोकने के मामले में भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए हैं। एकल पारदर्शी कर प्रणाली शुरू करने और व्यवसायों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़कर जीएसटी ने जो लेन देन की गुंजाइश है उसको कम कर दी है। इससे कंपनियों के लिए कर निरीक्षकों को रिश्वत देना और राजस्व छिपाना अधिक कठिन हो गया है।
Yes, and then of course we have the Prevention of Corruption Amendment Act 2018. This act brought several changes to India's anti-corruption framework. It introduced stricter penalties for public servants engaging in corrupt practices and criminalized the act of receiving bribes. The law also widened the scope of punishments for corporations and individuals involved in bribery.
और डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस से भी भ्रष्टाचार पर काफी हद तक नियंत्रण हुआ है। भारत सरकार की डिजिटल प्रोत्साहन भ्रष्टाचार से निपटने में एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। सेवाओं को डिजिटल बनाने और ई गवर्नेंस को लागू करने से पारंपरिक रूप से रिश्वतखोरी और हेरफेर की संभावना वाली कई प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। नागरिक अब पासपोर्ट जारी करने, जन्म प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड, बिचौलियों और भ्रष्ट आचरण की आवश्यकता को कम कर रहे हैं। और अभिषेक, आपने देखा होगा कि जो लोगों को सुविधा दी जाती थी, यहां से दिल्ली से एक रुपया जाता था और केवल 15 पैसे उन तक पहुंचते थे। जो डिजिटलीकरण हुआ है, इससे इस पर काफी नियंत्रण हुआ।
दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज गिवन बाय वन ऑफ अ फॉर्मर
प्राइम
मिनिस्टर्स।
बिल्कुल।
So and but now Mukesh, all the processes have been much more streamlined, and now we have the anti-corruption agencies, and several agencies have been created or strengthened to combat corruption at different levels of government, which play crucial roles in investigating and prosecuting corruption cases.
बिल्कुल, और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति भी इस दिशा में काफी कारगर साबित हुई है। भारत की राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति सार्वजनिक जागरूकता, संस्थानों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है। रणनीति के प्रमुख सिद्धांतों में से एक सरकार, व्यवसाय और नागरिक समाज क्षेत्रों में नैतिक नेतृत्व, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
Actions are pivotal in combating corruption. The role of ordinary citizens and civil society cannot be overstated. Grassroots movements, advocacy groups, and independent media outlets play an essential part in holding the government accountable.
बिल्कुल, यदि हम सभी बदलाव के लिए प्रयास करते रहें और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को प्राथमिकता दें तो एक स्वच्छ, न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना वास्तविकता बन सकती है।
Absolutely, and the commitment to fighting corruption must be constant with the active participation of citizens, civil society and government working together. No society can thrive when corruption becomes the norm. So let's be the change agents fostering a culture of integrity and accountability.
बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हुए हमें याद रखना है कि हर आवाज मायने रखती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी आवाज बदलाव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। तो आइए बोलें, खड़े हों और भ्रष्टाचार को ना कहें। और परिक्रमा कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले उड़ीसा चलें।
यस, वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम संबलपुर मुकेश। एंड विद द ऑनसेट ऑफ विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैव स्टार्टेड अराइविंग एट हीराकुड डैम रिजर्वॉयर। सेवरल स्पीसीज हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट हीराकुड वेटलैंड। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द सेंसस व्हिच विल कवर द एंटायर लेक। वी हैव मोर फ्रॉम अ संबलपुर कॉरेस्पॉन्डेंट आलोक चंद्र।
Every year, thousands of exotic birds of different species migrate to the Hirakud Reservoir in November. The avian guests stay put for 4 months till March before flying back. The birds come from the Caspian Sea, Baikal Lake, Mongolia, Central and Southeast Asia and the Himalayan region to the reservoir due to the presence of large wetlands. In the first phase, Australia, Silver Gulf, Europe and Central Asia, the great crested Indian spotball species of bird Hirakud seems to have come. About the preparation of the bird census in Hirakud wetland, Hirakud Divisional Forest Officer Anshu Pragyan Das
बर्ड से लगभग मार्च अप्रैल तक रुकते हैं। कुछ बर्ड परमानेंटली यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं हीराकुड वेटलैंड में और बाकी के बर्ड्स रिटर्न हो जाते हैं। 2024 जनवरी में जो बर्ड सेंसस हुआ था उसमें अराउंड 100 प्लस स्पेशीज और नियर अबाउट 4 लाख बर्ड्स काउंटिंग हुए थे। इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी अच्छे संख्या में बर्ड्स आए हैं। और अगर हम हीराकुड वेटलैंड एंटर करते करते हमें के पास ही टफ्टेड डक्स, ब्राह्मणी डक्स, काफी तरह के पोचार्ड, डार्ट्स ये सब भी दिख जाते हैं और टर्न बहुत सारे यहाँ पे नेस्टिंग कर रहे हैं। अभी पैटिन कोल्स आ रहे हैं और गर्ल्स भी काफी सारे हैं। तो इस बार जनवरी 8 को भी पूरा 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो हीराकुड रिजर्वर का है, हीराकुड डैम से शुरू करके ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक हम लोग 20 से ज्यादा सेक्टर्स में डिवाइड करके छोटे छोटे ग्रुप बना के 8th ऑफ जनवरी 2025 को सेंसस करने वाले हैं।
फर परिक्रमा, दिस इज आलोक चंद्र बारिक, आकाशवाणी संबलपुर।
और अब चलते हैं छत्तीसगढ़। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित माओवादियों और माओवाद पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। तो आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस विशेष परियोजना में जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आत्मसमर्पित माओवादियों और माओवाद पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आत्मसमर्पित माओवादियों को आवास की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले पीड़ित परिवारों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत मिलने वाले आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बनेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को सहायता प्रदान करना है जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है। इस योजना के अंतर्गत सरकार जरूरतमंदों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देती है जिससे वे अपने लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ घर बना सकें। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
और छत्तीसगढ़ से अब अपने श्रोताओं को लिए चलते हैं पुदुचेरी।
In a landmark step towards promoting continuous learning and professional development, Puducherry has partnered with the Karma Yogi Bharat and the Capacity Building Commission to onboard its government officials onto the integrated government online training iGOT Karma Yogi platform. And the Memorandum of Understanding MOU for this transformative initiative was signed between the government of Puducherry and Karma Yogi Bharat. Secretary of the Administrative Reforms Department, Puducherry, Pankaj Kumar Jha, and Karma Yogi Bharat's Chief Executive Officer, P. Lalita Lakshmi, formalized the agreement in the presence of Lieutenant Governor K. Kailash Nathan and Chief Minister N. Rangasamy. We have more from a correspondent, Bipin S. Nath.
With the signing of the MOU, Puducherry has become the 14th state or union territory to join the IGOT Karma Yogi initiative. The platform facilitates anytime, anywhere and any device learning, enabling civil service officials to enhance their competencies. Nationwide, over 49 lakh central and state government employees are already engaged with the IGOT Karma Yogi platform through its website and mobile application. In Puducherry, over 2,400 government employees from various departments have already enrolled on the IGOT Karma Yogi platform, completing more than 10,000 course enrollments. Delivering a special address at the MOU signing ceremony, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan said that IGOT Karma Yogi platform is not just a learning tool, but a platform for transformation. He also encouraged employees to embrace lifelong learning. Mr. Kailash Nathan also expressed confidence that the training would empower officials to better serve future citizens and effectively address evolving governance challenges. Chief Minister N. Rangasamy, in his presidential address, highlighted the potential of the IGOT platform to enhance administrative efficiency and ensure timely delivery of government schemes to the public. Speaking about the future plans for the platform, Karma Yogi Bharat CEO V. Lalitha Lakshmi shared that 15 to 20 courses are being identified to develop content in regional languages. She further added that states and union territories will be encouraged to create region-specific content for the platform. For Agashavani News, this is Bibin Astad from Puducherry.
और प्रसार भारती सचिवालय ने आज नई दिल्ली में अपने कार्यालय में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में हिंदी माह के अंतर्गत आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यशाला और गोष्ठियां शामिल रहीं। ये प्रतियोगिताएं 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच आयोजित की गई थीं। और इस अवसर पर विजेताओं को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि हिंदी हम सबको संस्कृति, इतिहास और विरासत से जोड़ती है।
देश के लगभग 40% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारे को हमारी संस्कृति से, हमारे को हमारे इतिहास से, हमारे को हमारे विरासत से जोड़ती है। आप अपनी भाषा भी सीखिए, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी भी सीखिए, क्योंकि हिंदी एक पुल की तरह काम करती है।
और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि राजभाषा का प्रचार और प्रसार करना हमारा नैतिक दायित्व है।
तो इसीलिए राजभाषा के प्रचार, राजभाषा के विस्तार का काम हम लोगों को केवल एक कानूनी या सरकारी दायित्व समझकर ना करके बजाय ये जरूरी है कि हम उसको अपने देश की प्रगति के विषय से जोड़ करके हमेशा देखें।
इस समारोह में आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
In business news today, benchmark domestic equity indices today ended with marginal losses of 0.2%. The 30-share BSE Sensex fell 201 points to close at 81,508. And the NSE Nifty 50 dipped 59 points to settle at 24,619. In the global crude market, Brent crude was trading 1.1%, up at $71.90 per barrel. And WTI crude gained over 1.2% to trade at $68.06 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading up at 77,240 rupees per 10 grams. Silver 999 fine is also trading up at 93,380 per kilogram when reports last came in.
और अब खेल जगत की भी बात कर लेते हैं और खेलों में हम बात करेंगे हॉकी की। तो ओमान के मस्कत में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और पूल ए के मैच में ये जो मुकाबला है वो भारतीय समय के अनुसार शाम को 8:30 बजे से खेला जाएगा।
यस एंड यस्टरडे इंडिया रिकॉर्डेड अ डोमिनेंट 13-1 विक्ट्री फॉर बांग्लादेश। Mumtaz Khan led the charge for the women in blue with an impressive 4 goals supported by hat-tricks from Kanika Siwaj and Deepika. The Junior Asia Cup serves as a qualifying event for the FIH Junior World Cup, which will take place next year in Chile. The top 5 teams from the tournament will secure their spots in the World Cup. And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 9th of December 1946, the Constituent Assembly met for the first time in New Delhi in the Constitution Hall, which is now known as the Central Hall of Parliament House. 207 representatives, including 9 women, were present. The inaugural session began at 11 a.m. with the introduction of Dr. Sachidananda Sinha, the temporary chairman of the assembly, by Acharya Kripalani. Dr. Sinha read out the goodwill messages received from different countries, and after the inaugural address and the nomination of a deputy chairman, the members were formally requested to present their credentials. The first day's proceedings ended after all the 207 members present submitted their credentials and signed the register.
All India Radio Delhi broadcast a composite sound picture of the entire proceedings.
In today's episode, we remember freedom fighter Raj Narayan Mishra, who was martyred on the 9th of December, 1944. A resident of Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, Raj Narayan was a firm believer in socialism, leading to a classless society. He led raids on the British establishments with his group during the Quit India Movement, 1942.
Raj Narayan was charged with revolutionary raids in the Unnao region of Uttar Pradesh and sentenced to death. He attained martyrdom on December the 9th, 1944, when the British hanged him till death in the Lucknow Central Jail. He went to the gallows with the slogan, "Inqilab Zindabad," on his lips. We salute this great Indian freedom fighter.
We also remember Bengali feminist thinker, writer, educator and political activist Rokeya Shakhawat Hussain, whose birth as well as death anniversary fall on the 9th of December.
She is widely regarded as a pioneer of women's liberation in South Asia. Her writings, which span poetry, fiction and essays, espoused progressive ideas for gender equality and envisioned a better and fairer world for women.
Popularly known as Begum Rokeya, she was born in the year 1880 in Rangpur district of Bengal Presidency, now in Bangladesh. She grew up in an orthodox environment, and it was through her husband and brother that Rokeya eventually found freedom.
Seeing her sister Karimunnisa, who often wrote poetry, getting married off at the age of 15 solidified her faith in education and individual rights for women. And from this belief emerged Sultana's Dream, where Rokeya traverses an alternate world where reality has been flipped and women rule the world while men remain indoors.
It is one of the first and finest examples of feminist science fiction from India. Her other works include Padmarag, Essence of the Lotus, depicting the difficulties faced by Bengali wives, and Abarodhbasane, the Confined Women, a spirited attack on the extreme forms of parda that endangered women's lives and self-image.
In 1916, Rokeya founded the Muslim Women's Association to work towards women education and employment. In 1926, Rokeya presided over the Bengal Women's Education Conference convened in Kolkata, the first significant attempt to bring women together in support of women's education rights.
She remained committed towards the advancement of women's rights until her death on the 9th of December 1932, shortly after presiding over a session during the Indian Women's Conference. We salute this great women's rights champion.
और अब याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है. तो इस क्रम में सबसे पहले किसे याद करेंगे?
Yes, Dolores Jenny Rivera passed away on this day in 2012. She was an American singer, songwriter, actress, businesswoman and producer known for her work within the regional Mexican music genre, specifically in the styles of banda, mariachi and norteño.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय चिकित्सक रहे जिन्होंने घायल सिपाहियों के इलाज करते करते अपने प्राण त्याग दिए. जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कोटनिस की. आज 9 दिसंबर 1942 को आज उनका निधन हुआ था. कोटनिस उन 5 युवा डॉक्टर्स में शामिल थे जिन्हें 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन में राहत कार्यों के लिए भेजा गया था. शोलापुर में 10 अक्टूबर 1910 को जन्मे कोटनिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में मेडिसिन की पढ़ाई की थी और चीन में मरीजों की सेवा करने वाली नर्स गु क्विंग लोंग से उन्होंने विवाह किया था। और बताया जाता है कि कभी कभी डॉक्टर कॉन्टेंशन लगातार 72 घंटे तक लैंप की रोशनी में युद्ध में घायल सैनिकों के ऑपरेशन किए और उनकी जान बचाई। बिना सोए कई दिन तक चीनी सैनिकों का इलाज करने के कारण उन्हें मिर्गे का दौरा पड़ा और 1942 में केवल 32 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।
Yes, and Shatrughan Prasad Sinha was born on this day in 1946. Sinha got his first acting opportunity to play a Pakistani military officer in Devanand's Prem Pujari. Before that, he got a small role as a police inspector in Mohan Sehgal's Sajan in 1969. The release of Prem Pujari was delayed, so his first released film was Sajan. He later appeared in villainous roles, and his first successful film as a lead hero was in Kali Charan in 1976. Let's go ahead and listen to some of his dialogues.
बिल्कुल, और उनकी फिल्म का ये डायलॉग पहले सुनते हैं।
जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं।
और उन्होंने मेरे अपने फिल्म में भी बहुत अच्छा रोल किया था, तो क्यों ना उस फिल्म का भी डायलॉग सुना जाए।
शाम कहाँ है?
वो तो पिट्टू को लेकर दवाखाने गया है।
आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख।
और अभिषेक, शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म की थी काला पत्थर, उसमें भी उनकी अदायगी काफी प्रसिद्ध रही, तो उसका भी डायलॉग सुनते हैं।
अरे मेरे बदायूं के लल्ला, अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहां से मंगल ना निकल सके। मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं, दिखाई नहीं देता।
और कन्नड़ साहित्यकार कोटा शिवराम करंत की आज पुण्यतिथि है। अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने यक्षगान के अंतरंग में प्रवेश करने का साहस किया। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों, शब्दकोशों और विश्वकोशों को तैयार करने में जी जान से काम किया। 1922 में गांधी जी की पुकार पर वे कॉलेज छोड़कर रचनात्मक कार्यक्रम में लग गए। शिवराम कारंत ने अपना ध्यान मानव और उसकी परिस्थिति को देखने पर केंद्रित किया। दुर्घटनाओं के बीच भी मनुष्य की जीने की इच्छा से वो बहुत प्रभावित थे।
Dame Judith Oliver Dench was born on this day in 1934. She is an English actress, widely considered one of Britain's greatest actors. She is noted for her versatility, having appeared in films and television programs. And she gained international fame as M in GoldenEye in 1995, a role she went on to play in 8 James Bond films, until her final cameo appearance in Spectre in 2015. Let's listen to her singing Send in the Clowns. And it's from A Little Night Music.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clouds.
Yes, and Dino Moria was born on this day in 1975. He's an actor and former model who's also appeared in several Hindi, Tamil, Kannada, Malayalam and Telugu films. Moria initially established himself as a fashion model before making his film debut in 1999 film Pyar Mein Kabhi Kabhi. He had his most significant commercial success in the horror film Raaz in 2002. Let's listen in to a song from one of his movies. Yes, and Dia Mirza Rekhi, born Dia Hamridge, was born on this day in 1981. She's an actress who primarily works in Hindi films. Mirza won the title of Miss Asia Pacific International in 2000 after being crowned Femina Miss India Asia Pacific in 2000. And she made her acting debut with the Hindi film Rehna Hai Tere Dil Mein. And let's listen in to a song from one of her movies.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in।
नमस्कार।